वो निकाल लीजिए, उसका तर्जुमा इंशाल्लाह अभी हम शुरू करते हैं। मारफुल कुरान से बामुहावरा तर्जुमा करेंगे और साथ साथ ही आज आपको लफ्जी तर्जुमा थोड़ी बहुत तहकीक वगैरह लफ्जी तहकीक साथ साथ बताता रहेगा। चाहिए कि अपने नोटबुक्स में या किताब के ऊपर जैसे भी आप मुनासिब समझें इनको आप लिखते रहें, ये जो लफ्जी तहकीक वगैरह बताएंगे। हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, कल्ला सयअलमून थुम्मा कल्ला सयअलमून, अलम नजअलिल अर्ध मिहादा वल जिबाल अवतादा वखलक़नाकुम अज़्वाजा وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो ये आखिरी सूरत हम तीसरे पारे की पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पीछे से शुरू किया था सूरत नास से। तो सूरह नबा ये भी मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना मनवरा से पहले नाजिल हुई, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसके अंदर 40 आयात हैं, यानी सो फार हमने जितनी सूरतें पढ़ी हैं उनमें से ये सबसे बड़ी सूरत है, क्योंकि सूरतों की का जो साइज़ है कुरान करीम में अमूमन वो आगे की तरफ घटता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कुरान शरीफ में तो साइज़ कम होता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। जैसे सूरह कौसर वो सबसे छोटी सूरत है, लेकिन सूरह कौसर के बाद कुछ उससे एक दो आयात लंबी सूरतें भी मौजूद हैं। सूरह फलक सूरह कौसर से ज़्यादा लंबी है, लेकिन इन जनरल इस तरह से होता है। पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलून, पहली आयत इसकी बामुहावरा तर्जुमा कि क्या पूछते हैं लोग आपस में। पहला लफ्ज है अम्मा। ये अम्मा दरअसल दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज पहला लफ्ज है अन, ऐन नून अन, जो कि हर्फ जर है और इसका तर्जुमा अबाउट यानी बारे में, ठीक है ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अबाउट समथिंग ना, तो अन का मतलब बारे में। और उसके बाद है मीम अलिफ मा। ये मीम अलिफ ये माए इस्तेफामिया है, यानी क्वेश्चन करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, तो लिखने में मा लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते, यानी लिखने में अलिफ नहीं लिखा है इसके साथ, क्यों नहीं लिखा, तो تو اس کی مختلف ریزنز علماء نے بیان کرے ہیں جو لغت کے علماء ہوتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ حرف جر کے ساتھ جب ما استفہامیہ جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا الف نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے, یہ عربی زبان کا ایک عرف ہے, یہ ایک جنرل پرنسپل یا جنرل ویوز ہے ایسا, میم الف کا الف نہیں لکھا جاتا اگر حرف جر کے ساتھ ما جڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے, ریزن اس کے مختلف لکھے ہیں کہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ جو چیز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے بول چال میں تو عرب نا اس کو ایبریویٹ کر دیتے ہیں, جیسے ہم لوگ بھی ایبریویٹ کرتے ہیں بہت زیادہ چیز جو استعمال ہوتی ہے اس کو. ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن تو ہر مرتبہ کوئی نہیں بولتا نا, تو ایم بی اے بولتے ہیں, ایبریویشن کیوں کرتے ہیں, کثرت استعمال کی وجہ سے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یتساءلون یہ دوسرا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں سوال کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. سألا یسألو سوال کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کو جب آپ تساءل یتساءل تقابل یتقابلو کے باب میں ڈال دیں, سألا یسألو کو تقابل کے باب میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, تو یہ بن جاتا ہے تساءل یتساءلو. ٹھیک ہے, یتساءلو کا مطلب سوال کرنا نہیں ہوتا بلکہ آپس میں سوال کرنا, ایک دوسرے سے سوال کرنا, باہمی سوال کرنا. تو یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اما یتساءلون یہ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ام بلکہ ان میم الف ما. ٹھیک ہے, ما کا مطلب ہوتا ہے کیا, اباؤٹ یعنی واٹ. ٹھیک ہے, تو اباؤٹ واٹ دے آسک ایچ ادر اباؤٹ, اور دے آر آسکنگ ایچ ادر اباؤٹ, بلکہ دے آسک ایچ ادر اباؤٹ اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس سوال کا اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں. عن النبا العظیم پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو ان کا مطلب ہوتا ہے بارے میں, جیسے ابھی آپ کو بتایا وہی ان ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اس ان کے ساتھ میم الف نہیں لگا ہوا کیونکہ اب جواب ہے, اب سوال نہیں ہے, تو اس وجہ سے ما استفہامیہ یہاں پر نہیں ہے. نبا, نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر. ٹھیک ہے, تو ان نبا دا نیوز. ٹھیک ہے, انگلش میں دا نیوز کہیں گے اس کو کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. اور کیسی نیوز, العظیم بہت بڑی نیوز. ٹھیک ہے, عظیم کا لفظ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, تو عظیم جو ہے وہ ایک صفت ہے. ٹھیک ہے, خبر بہت بڑی, تو یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, الذی ہم فیہ مختلفون جس میں وہ مختلف ہیں. الذی اسم موصولہ جس کا ترجمہ جو سے کرتے ہیں یا جس سے بھی کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. ہم کا مطلب یہ ایک پروناؤن ہے, ضمیر جس کو عربی میں کہتے ہیں, اور یہ پروناؤن کس کے لیے ہوتا ہے, جمع مذکر غائب, یعنی تھرڈ پرسن ماسکولن پلورل اس کے لیے جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے. انگلش میں کیا ہوتا ہے, دے, THEY, دے, اور عربی میں ہم. ٹھیک ہے, تو جس, الذی ہم جس, اور ہم کا مطلب یہ لوگ, بلکہ وہ اس طرح سے اردو میں ترجمہ کریں گے. فی ہی, فی حرف جر جس کا ترجمہ میں, اور ہی سے مراد ہی بھی ایک پروناؤن ہے. یہ پروناؤن کس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے, یہ پروناؤن جو ہے وہ نبا العظیم کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے کہ اس میں. تو الذی ہم فی ہی جس میں وہ مختلفون اختلاف کرنے والے, اختلاف کرنے والے. ٹھیک ہے, تو مختلفون کن کو کہتے ہیں, اختلاف کرنے والے لوگ یا اختلاف کرنے والے مرد. ٹھیک ہے, اختلف یختلف اختلافا فہو مختلف. ٹھیک ہے, اجتنبا یجتنب باب جو صرف انہوں نے پڑھا ہے, تو یہ اس کا اسم فاعل ہے, مختلف یعنی اختلاف کرنے والے, اختلاف کرنے والا. اس کو آپ جمع میں ڈال دیں تو مختلف ہونا بن جائے گا. ठीक है, जिसमें ये लोग इख्तिलाफ करते हैं। क्या मतलब कि ये लोग आपस में जो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको दी है, लेकिन ये लोग आपस में यानी इख्तिलाफ कर रहे हैं कि ये होगा नहीं होगा। कोई कह रहा है कि पता नहीं ये सच कह रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं ये झूठ कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। इसको कहते हैं इख्तिलाफ करना, ठीक है, और बगैर दलील के इख्तिलाफ कर रहे हैं। ये कोई इल्मी इख्तिलाफ नहीं है, ये बस ऐसे ही अपने नफ्स परस्ती की वजह से इख्तिलाफ कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बात के अंदर, बताई हुई खबर के अंदर इख्तिलाफ कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला आगे कहते हैं, कल्ला सयालमोना, हरगिज नहीं, अनकरीब ये जान लेंगे। ठीक है, तो कल्ला आप लोगों को पहले बताया है कि ये एक हर्फ होता है जिसको हर्फ रदा, रा दाल ऐन, रदा, रदा का मतलब होता है झिड़कना या सख्ती के साथ ना निगेट करना गलत बात को सख्ती के साथ। तो कल्ला के जरिए से जो पीछे गलत बातें ये लोग कर रहे हैं ना, उनको सख्ती के साथ डिनाई कर दिया गया है, हरगिज नहीं। उर्दू में हम कहते हैं हरगिज नहीं। सयालमूना, यालमूना ये फेल है, ठीक है। अलीमा यालमू, यालमू का मतलब होता है वो जानता है या वो जान लेगा, यालमू, ठीक है। उसको जम्मा बना दें तो यालमूना, यानी वो सब जानते हैं या वो सब जान लेंगे, ठीक है। अब सीन जो साथ लगा दिया जाता है, तो सीन से क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रेजेंट टेंस का मीनिंग होता है वो निकल जाता है और सिर्फ फ्यूचर का मीनिंग रह जाता है, ठीक है। तो सीन का तर्जुमा हम करते हैं अनकरीब, वेरी सून, दे विल नो, वेरी सून, यालमूना, दे विल नो, ठीक है। यानी ये जो झगड़ रहे हैं आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं, तो थोड़े दिन में इन्होंने मर जाना है और मरने के बाद इनको सब पता लग जाएगा, ठीक है, लग पता जाएगा। हम कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला इसी तरह फरमा रहे हैं कि सयालमूना, अनकरीब जान लेंगे। फिर उसके बाद इसी को रिपीट कर रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट चीजें इतनी कि अल्लाह ताला इसको रिपीट कर रहे हैं। सुम्मा, फिर, कल्ला, हरगिज नहीं, सयालमूना, अनकरीब ये लोग जान लेंगे हकीकत को, ठीक है। यानी हकीकत को यहाँ पर छुपा हुआ है, अज्यूम्ड है कि हकीकत को ये जान लेंगे, लेकिन यालमूना का मतलब होता है वो जान लेंगे। कोई सवाल सो फार? 5 आयात हो गए। अलिमा यालमू, समिया यस्मऊ बाप से ये बनता है अलिमा यालमू, और यालमूना इसका जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। 6 आयत, अलम नजअल अर्ज मिहादा, क्या हमने नहीं बनाया जमीन को बिछोना या बिछौना। अलम, इसमें जो पहला लफ्ज है वो सिर्फ हमजा है, हमजा जो कि हमजा इस्तिफामिया कहलाता है, जिसका तर्जुमा भी क्या से करते हैं। मा इस्तिफामिया पहली आयत के अंदर बताया था आपको, ठीक है, उसी तरीके से हमजा भी इस्तिफाम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका तर्जुमा क्या। लम, ये लम एक हर्फ होता है, ठीक है, नफी करता है ये फेले मुजारे की। तो इसके आगे जो नजअल है ये फेले मुजारे है, ये असल में क्या था, ये नजअलू था, नजअलू। लम लगने से क्या होता है कि हालत जजम में चला जाता है, तो ये बन जाता है लम नजअल, ठीक है। नजअलू का मतलब होता है हम बनाएंगे या हम बनाते हैं, नजअलू, हम बनाते हैं या हम बनाएंगे। लेकिन जब लम लग जाता है तो लम लगने से तो ये हालत जजम में चला जाता है, तो ये नजअलू से नजअल हो जाता है। दूसरा कि इसका मीनिंग जो है वो निगेट हो जाता है, इसका मतलब मानी, तो हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक और भी चेंज आता है, वो चेंज क्या है कि है तो ये फेले मुजारे जिसमें प्रेजेंट टेंस की मीनिंग होते हैं, लेकिन लम लगने से ये पास्ट टेंस का मीनिंग देना शुरू हो जाता है, पास्ट टेंस, ठीक है। तो हमने नहीं बनाया, अब तर्जुमा क्या बन गया, हमने नहीं बनाया, ठीक है। किसी ने भी आप में से सवाल किया था, शायद क्लास में तो नहीं है, लेकिन कि फेले मुजारे पर लम लगाने से वो यानी माजी मनफी का मानी देना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो भाई सिंपली माजी मनफी क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? ठीक है, जाला इसका माजी होता है, तो मा जाला इस्तेमाल कर लें, मा जाला। मा जाला का भी यही मतलब होता है, हमने नहीं बनाया, ठीक है ना, मा जाला, ये नहीं बनाया हमने। और लम नजअल का भी वही मानी होता है कि हमने नहीं बनाया, तो मा जाला क्यों नहीं इस्तेमाल किया, लम नजअल क्यों इस्तेमाल किया? तो इसका वैसे तो एक्चुअली तहकीक यकीनन होगी, मेरे जहन में नहीं है एग्जैक्टली, बड़े बड़े उलमा ने अगर इसकी कोई बहुत ज्यादा दकीक तहकीक बताई है, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। लेकिन एक बात पता है कि ये कलाम की फसाहत और बलागत और खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरी यानी इससे खूबसूरती आती है कलाम के अंदर, होता है ना कि एक 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 जिसे कहते हैं कि कलाम के अंदर ना एक क्या कहते हैं लफ्ज है, जैसे शेर व शायरी के अंदर बाकायदा काफिया मिलाते हैं, एक वजन होता है कलाम का, तो कलाम के अंदर ज्यादा हुस्न और खूबसूरती और ज्यादा बेहतर वजन जो है वो लम से पैदा होता है। ठीक है, इस वजह से कुरान के अंदर आप देखेंगे कि नफी करने के लिए, माजी की नफी करने के लिए, हाँ फसाहत और बलागत वगैरह, तो माजी की नफी करने के लिए फेले माजी माँ के साथ इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम हुआ होगा कहीं, लेकिन लम के साथ फेले मुजारे इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये क्लासिकल अरेबिक में, यानी जो ट्रेडिशनल पुरानी अरबी है ना, जो कि जाहिर है कुरान की अरबी जो है वो आजकल की अरबी तो नहीं है, ये तो असल अरबी है, तो असल अरबी के अंदर ना लम ज्यादा इस्तेमाल होता है। आजकल की अरबी के अंदर ये लोग लम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, बल्कि माँ और फेले माजी इस्तेमाल करते हैं। कुरान के अंदर लम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और सबसे बड़ी मिसाल सबको याद है, लम यलित व लम यूलत, वहां पर भी लम फेले मुजारे के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यही सो फार मतलब ये फर्क एक मिला है किताबों के अंदर, और यही है फसाद व बलागत वाला और खूबसूरती कलाम की खूबसूरती वाला। तो खैर, लम नजअल हमने नहीं बनाया, अलम नजअल क्या हमने नहीं बनाया, जैसे हम कहते हैं ना, क्या मैंने यह काम नहीं किया, इस तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं किसको नहीं बनाया, अल अर्दा जमीन को, मिहादन। ठीक है, तो मिहादन क्या चीज होती है, मिहाद जो है वो बिछौने को कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कोई चीज जब आप बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, कोई और चीज जमीन के ऊपर जब बिछाया, बिछाई हुई चीज, उसको जो है मिहादन कहते हैं। जमा का सीगा है ये मिहादन, महादा यमहदु, उसका माजी और मुजारे बनता है। अच्छा, तो जमीन को अल्लाह ताला ने एक बिछौने की तरह से बनाया कि बिछौने के ऊपर फिर इंसान चलता फिरता है या लेटता है, सोता है, अपने काम करता है। तो अल्लाह यहाँ से ना अब अपनी तखलीकात की बात कर रहे हैं, मखलूकात की बात कर रहे हैं, जमीन का जिक्र हो गया, फिर उसके बाद जमीन के ऊपर जो पहाड़ हैं, वल जिबाल अवतादन, और जिबाल को हमने यानी पहाड़ों को हमने मीखें, मेखें जो होता है मेखें, ठीक है, यानी जिसको हम मेल कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में कील कील कहते हैं, तो जिबाल जबल की जमा है, जबल पहाड़ को कहते हैं, और अवताद जो है वो वतदुन की जमा है, वतदुन। ठीक है, तो वतदुन क्या चीज होती है, मीख यानी नेल। ठीक है, तो ये आयत जो है ये कह सकते हैं जी बड़ा साइंटिफिक मिरेकल ऑफ द कुरान है। ठीक है, क्योंकि मेख की जो जो फॉर्म होती है कि वो बाहर से कम नजर आती है और अंदर ज्यादा होती है, घड़ी भी ज्यादा हिस्सा होता है उसके अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से आज की जियोलॉजी ने ये बात बताई कि जो पहाड़ होते हैं वो ऊपर कम होते हैं, 1/3 ऊपर होते हैं और 2/3 जो है तो होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, और ये ना सिर्फ ये कि वो 2/3 जमीन के नीचे होते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ये कि जो जमीन का स्ट्रक्चर है उसको ये बाकायदा यानी जोड़ने के काम आते हैं, जिस तरह से कि कील जो है वो जोड़ने के काम आती है, उसी तरीके से पहाड़ जमीन को जोड़ने के काम आते हैं। अगर जरा सा पहाड़ जो है वो हिल जाए ना, तो उससे जलजला आ जाता है, जमीन हिलनी शुरू हो जाती है। ये टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं, ये पहाड़ों के ही नीचे के जो एरिया जो पार्ट होते हैं उनको, उन्हीं को फिर प्लेट्स वगैरह कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो जरा सा हिल जाते हैं और पूरी की पूरी जमीन ऊपर से हिलना शुरू हो जाती है। तो ये दूसरी अल्लाह ताला ने मखलूक के बारे में बताया। फिर तीसरा, वह खलक ना कुम अजवाजन, और तुमको बनाया हमने जोड़े जोड़े। واو حرف عطف ترجمہ اس کا اور خلقناکم ٹھیک ہے تو خلقنا فعل ہے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم ٹھیک ہے فعل ماضی معروف تو فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ خلقنا مطلب ہم نے تخلیق کیا کم کم یہ ضمیر ہے پروناؤن ہے جو کہ جب کئی لوگوں سے بات کی جا رہی ہو تو یہ ان کی طرف یعنی ہم نے تم کو پیدا کیا ٹھیک ہے تم جیسے اردو میں کہتے ہیں تو عربی میں اس کو کم کہتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا ہم نے تم کو بنایا تخلیق کیا تخلیق اور پیدا کرنا انٹرچینجبلی بھی استعمال ہوتا ہے لیکن پیدا کرنے کا لفظ جو ہے وہ جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہوا اس طرح سے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن تخلیق جو ہے نا وہ ماں نہیں کرتی تخلیق کا کام صرف اور صرف پروردگار کرتا ہے اس تخلیق کا لفظ زیادہ اپروپریٹ ہے ازواج یہ زوج کی جمع ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں زوج جو ہے وہ یعنی ایکچولی پارٹنر کو کہتے ہیں تو ازواج کا مطلب پارٹنرز بنائے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کریشن دنیا میں بنائی ہے تو ہر کریشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسی کے جنس کا ایک پارٹنر بنایا ہے جیسے کہ انسانوں کے اندر تو بہت آسان ہے کہ مرد کے لیے عورت عورت کے لیے مرد ٹھیک ہے حتیٰ کہ جو ریسرچرز ہیں تو وہ بہت ریسرچ کر کر کے بھی نا پہنچے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک جوڑا موجود ہے ٹھیک ہے اب کچھ ایسی کریشنز جیسے امیبا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی امیبا جو ہے وہ اس میں صرف میل ہی ہوتا ہے کوئی فیمیل نہیں ہوتا تو اس میں ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سائنٹیفک ڈسکوریز جو ہوتی ہیں تو یہ تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ یعنی یہ ایکسپینڈ ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کو کوئی چیز اگر نہیں ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی بہت ساری چیزوں کے اندر ان کی جو ایزمپشنز ہوتی ہیں وہ بعد میں پروو ہو جاتی ہیں کہ جی وہ غلط تھیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ حتمی بات تو نہیں ہوتی سائنس کی ڈسکوریز ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا کوئی فیمیل ہو جو کہ بعد میں ڈسکور ہو یا ان ادر ورڈز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ازواج کا مطلب جو ہے نا وہ اس کا کوئی اپوزٹ ہو ٹھیک ہے نا کوئی نہ کوئی اپوزٹ جیسے کہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ جو بھی کریشن اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے جس شکل کی بھی ہوتی ہے جس فارم کی بھی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اپوزٹ ضرور ہوتا ہے جیسے کہ ایون دن ایک اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے ٹھیک ہے نا ابھی کریشن جو ہے وہ ایکچولی ہوتی کیسے ہے کہ جی سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو اس ٹائم کو ہم دن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بظاہر دن کے کوئی فیمیل تو موجود نہیں ہے دن کا کوئی پارٹنر موجود نہیں ہے لیکن اس کی اپوزٹ ایک چیز موجود ہے جس کو کہ رات کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دن اور رات ان کو بھی پارٹنرز کہا جائے گا ٹھیک ہے خوشی اب خوشی جو ہے یہ کوئی ایسی فزیکل ٹینجیبل چیز نہیں ہے بس ایک انسان کی فیلنگ ہوتی ہے جس کو خوشی کہتے ہیں اب اس یہ فیلنگ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے ٹھیک ہے نا کہ انسان جو ہے وہ خوش فیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کریشن میں ہی آئے گا ٹھیک ہے لیکن خوشی کا پارٹنر کدھر ہے بھائی تو خوشی کا پارٹنر کیا فرمایا علماء نے کہ خوشی کا پارٹنر جو ہوتا ہے وہ غمی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کا اپوزٹ ہے تو یہ اس طریقے سے ہر چیز پر پارٹنرز کے اندر بن جائے ایون کیفیات کے پارٹنرز ہوتے ہیں خوشی کا پارٹنر غم محبت کی کا پارٹنر نفرت ٹھیک ہے اس طرح سے وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے بنایا جیسے پیچھے ورڈ ہم نے پڑھا نا نجعل تو نجعلو جو تھا وہ مضارع تھا تو اس کا ماضی کیا ہوتا ہے جعلا تو جعلا کو جب آپ گدان میں چلائیں تو جعلنا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم نے بنایا یا ہم نے کر دیا جعلنا کا ترجمہ کر یعنی جعلا کا ترجمہ کر سے بھی کرنا ہے کر دیا تو جعلنا کا مطلب ہم نے کر دیا نومکم تمہاری نیند کو نوم نیند کو کہتے ہیں تو نومکم نیند تمہاری سباتن سباتن کہتے ہیں راحت اور آرام کو یوم السبت جو ہفتے کا دن ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں نا یوم السبت یوم السبت کی ہسٹری کیا ہے کہ جو ہفتے کا دن تھا یہ بنی اسرائیل کے لیے چھٹی کا دن تھا ٹھیک ہے کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جی نہ تم کام کرو کوئی اور نہ تم اس دن اپنے معاش کے لیے کام کرو यानी जो मछलियां पकड़ने का उनका काम था उस जगह, उस खास इलाके के जो बनी इसराइल थे, वो मछलियां पकड़ा करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी यानी बदतमीजियों की वजह से अल्लाह ताला ने उनको एक आजमाइश में डाल दिया कि जी तुम हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ो, ये अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। अब जाहिर है वो पहले ही बदतमीज थे, तो उन्होंने फिर इस हुक्म के बाद फिर उनसे रहा ना गया और फिर वो मछलियां पकड़ना शुरू हो गए हफ्ते के दिन, तो फिर उनके ऊपर दूसरा अजाब आ गया। तो खैर, यौम सब्त जो है वो छुट्टी का दिन होता है, तो सुबाता से मुराद जो है वो राहत और आराम, बिकॉज छुट्टी के दिन सपोजिटली आपको आराम करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद 10वीं आयत, वजअलना लैला लिबासन, तो जालना का तर्जुमा हो चुका अल्लैल, रात को कहते हैं, लैलो नहार, ठीक है, नहार दिन को कहते हैं और लैल रात को कहते हैं। लिबासन, लिबास का मतलब ओढ़ना, जो चीज ओढ़ी जाती है अपने ऊपर अपने आज़ा को छुपाने के लिए दूसरों से, उसको लिबास कहते हैं, ठीक है। तो हमने इसको बनाया लिबासन, यानी एक पर्दे की चीज, क्योंकि जब रात आ जाती है तो अंधेरी रात जो है ये भी पर्दे का काम देती है, इंसान देख नहीं सकता उसके अंदर विदाउट इक्विपमेंट के, ठीक है, नेचुरल आंखों से तो नहीं देख सकता ना। अच्छा, इसके बाद वजअलना नहारा माशन, और हमने बनाया नहार को माश, यानी माश के लिए, नहार अभी बता दिया कि दिन को कहते हैं, ठीक है। नहार की जमा जो है वो अनहुरुन आती है, या नहुरुन भी आती है, खैर इम्पोर्टेंट नहीं है। माश का मतलब होता है कि यानी वो चीज जिसके साथ आप जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, जरिया माश कहते हैं ना। सर्फ वाले अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माश जो है वो मस्दरे मीमी है या इसम जर्फ है, मायशुन, जैसे मफअलुन होता है ना इसम जर्फ का पैटर्न, तो मायशुन ये इसका बनता है असल में, तो या को अलिफ से तब्दील कर देते हैं तो ये माशुन बन जाता है, ठीक है। तो दिन का वक्त जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो रोजी कमाने का वक्त है, इन जनरल सारे इंसान जो है वो दिन के वक्त ही अपना काम काज करते हैं और रात के वक्त आराम करते हैं, अनलेस के आपकी ड्यूटी, आपकी जॉब ऐसी हो कि रात को काम करना पड़े, जैसे कि खुसूसन जो पहरेदार होते हैं, सिक्योरिटी के पर्सनल होते हैं, तो वो रात के वक्त उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन बाकी सबकी दिन के वक्त ही होती है उन तौर पर, अनलेस के आप कोई आईटी स्पेशलिस्ट हो और सपोर्ट की कॉल पर हो या डॉक्टर हो और आपको पेजर दिया हुआ उन्होंने, तो वो और बात है। अच्छा, इसके बाद फिर वह बनाई ना फौकुम सबअन शिदादन, और बनाया यानी चुनी हमने, या और बनाया हमने तुम्हारे ऊपर सात चुनाई मजबूत, तो ये इन्होंने कुरान के अंदर जरा मुश्किल अल्फाज है, क्योंकि ये जो तर्जुमा है ना ओरिजिनली तो ये हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह का क्या हुआ तर्जुमा है, ठीक है, तो इस वजह से जाहिर है इसमें कुछ अल्फाज थोड़े मुश्किल होंगे हमारे लिए, लेकिन ये चुनने वाला लफ्ज तो वैसे अभी हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर अभी भी, दीवार चुनना, क्योंकि जब ईंटें वगैरह लगते हैं ना तो दीवार बनाने का लफ्ज बहुत आसान है, लेकिन दीवार चुनना ये भी इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से बनाइना का मतलब यही होता है बनाया हमने, ठीक है। बना यबनी ये इसका माजी और मुजारे होता है, बल्कि बना यबनी दराबा यद्रिबु बाप से होता है, तो इसी को आप गर्दान में चलाएं, फेले माजी को बना, बना बनऊ, बनत बनता, बनैना बनैता, बनैतुमा बनैतुम, बनैती बनैतुमा बनैतुन्ना, बनैतु बनैना, ठीक है, जमा मुतकल्लम का सीगा आ गया बनैना, ठीक है, हमने बनाया, ठीक है। तो हमने बनाया फौका, फौका का मतलब होता है ऊपर, फौक जैसे कहते हैं, तो असल में वो लफ्ज फौका होता है यानी ऊपर, कुम यानी ऊपर तुम्हारे, क्योंकि कुम के जमीर आपको अभी बताते आ रहे हैं ना कि जमा मुजक्कर हाजिर का प्रोनाउन है ये, जिसको उर्दू में हम तुम कहते हैं, तो तुम्हारे ऊपर फौका कुम, तो हमने बनाया तुम्हारे ऊपर सब, सब कहते हैं यानी ये नंबर है, इसम अदद है ये, और सब सबा जो है वो सात को कहते हैं, तो सबअन शिदाद, शिदाद शदीद की जमा है, ठीक है, तो شدید کی، اور شدید کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی مضبوط، محکم مضبوط. اوکے، تو سات شدید سے کیا مراد ہے؟ سات آسمان. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو سات آسمان ہے نا، یہ کچھ لوگ ذرا زیادہ ہی قرآن اینڈ سائنس کے ہو جاتے ہیں نا، ہر چیز پہ پھر وہ ہر چیز میں ہی سائنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ جو سات آسمان ہے نا ان کو پھر یہ جو ایٹموسفیئرک لیئرز ہوتی ہیں، یہ سٹراٹوسفیئر اور میزو میٹوسفیئر اور اس طرح کے، تو ان میں ڈھونڈنا شروع کر دیا نا آسمانوں کو. ٹھیک ہے، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے نا جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، یہ بالکل الگ چیز ہے. اور قرآن اور حدیث کے اندر جن سماوات کی بات ہو رہی ہے یا سات آسمان کی باتیں ہو رہی ہیں، بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنا ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ سارا کا سارا فزیکل ورلڈ ہے، ساری کی ساری مٹیریل چیزوں سے بنی ہوئی ورلڈ ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ پلانٹس ہوں، چاہے سٹارز ہوں، چاہے وہ گیلیکسیز ہوں، کچھ بھی ہو. جن آسمانوں کی بات قرآن حدیث میں ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اس مٹیریل ورلڈ کے باہر ہیں، یا مٹیریل ورلڈ کے بعد ہیں. یہ پہلا آسمان اس پوری مٹیریل ورلڈ کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد دوسرا آسمان شروع ہوتا ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان. ٹھیک ہے، تو یہ جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں، یا ہماری جو بھی انسانوں کی جو ہے وہ اسپیس کرافٹ گئے ہوئے ہیں وہ دیکھتی ہیں، یہ سب کا سب جو ہے نا یہ آسمان نہیں ہے، یہ اس دنیا کا حصہ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، فزیکل ورلڈ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سات شدید جو بنایا نا، یہ وہ آسمان ہے. وجعلنا سراجا وهاجا، اور بنایا ہم نے ایک چراغ چمکتا ہوا. تو جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا یا ہم نے کر دیا. سراجن، سراج کہتے ہیں چراغ کو، یعنی لیمپ جس کے اندر فیول برن ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چراغ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ وہ لائٹ پروڈیوسنگ سٹرکچر ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ایندھن ہوتا ہے، فیول ہوتا ہے، جو کہ جلتا ہے تو پھر اس سے انرجی نکلتی ہے، جس کو کہ ہم لائٹ انرجی کہتے ہیں یا ہیٹ انرجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے چراغ، اور سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ. ٹھیک ہے، وہاج یہ اس چراغ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ کیسا چراغ ہے؟ یہ وہاج چراغ ہے. وہاج کا مطلب ہوتا ہے جگمگانے والا، چمکنے والا. کیونکہ یہ جو چراغ ہے اس کے اندر جو فیول برن ہو رہا ہے نا، تو یہ فیول جو ہے اس سے لائٹ انرجی بھی پروڈیوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، صرف اس سے ہیٹ انرجی پروڈیوس نہیں ہو رہی، لائٹ انرجی بھی پروڈیوس ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے اس کی صفت جو بنتی ہے وہ جگمگانے والا، چمکنے والا. اور اس کی ایک اور صفت یہ بنتی ہے کہ یہ یعنی بھڑکنے والا بھی ہے. بھڑکنا، بھڑکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ باقاعدہ یعنی جس میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو بھڑکنا کہتے ہیں، آگ لگی ہوئی چیز کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو سورج ہے یہ ایک سٹار ہے، اور سٹار کے اندر فیول ہوتا ہے، فیول باقاعدہ جل رہا ہوتا ہے، اس سے ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے میں یہ پڑھ کر کے پھر ایک نقطے کی بات ذہن میں آئی تھی، وہ آپ کو بتانی ہے. کیا فرمانا ہے کہ پھر وہ کیا ہے جب اللہ ساتویں آسمان پر آتے ہیں تہجد کے وقت؟ ساتویں آسمان پہ تھوڑی آتے ہیں، پہلے آسمان پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا آسمان کا جو ابھی آپ کو بتایا وہی ہے، تو اس بات سے اس بات کا کیا آپس میں؟ وہ جو پہلے آسمان پر آتے ہیں نا تہجد کے وقت، ٹھیک ہے، تو پہلا آسمان جو ہے وہ ساتویں آسمان کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے. کیونکہ جب ہماری فزیکل ورلڈ ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ پہلا آسمان آتا ہے، پھر دوسرا آسمان. اب وہ پہلا آسمان ہی کتنا بڑا ہوگا کہ اس کے بعد دوسرا آسمان شروع ہوتا ہے، پھر تیسرا آسمان. ٹھیک ہے، تو ساتویں اللہ تعالیٰ ہیں کدھر؟ ابھی کدھر ہے؟ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر جو عرش ہے، عرش الہی، اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح سے آتے ہیں؟ وی ہیو ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا کیسے آتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے آنے کی. یہ متشابہات قرآن ہے نا. ٹھیک ہے، تو ان متشابہات قرآن کی ایگزیکٹ میننگ ہمیں نہیں پتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں بتائی، اس وجہ سے ہم اس کے ڈسکشن کے اندر نہیں پڑھتے ہیں کہ کیسے آتے ہیں، کیسے نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. फिर एक जगह आया है कि क्या तुम आसमान को नहीं देखते के देखते हैं मैं कैसे इस बुलंद इसको बुलंद बनाया। यहाँ आसमान को देखना क्यों कहा गया है? वहां पर जो आसमान का मीनिंग होगा ना, तो वो जो हमारी आंख जिधर तक जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो देखने की बात है उसकी वैसे तो तफसीर मैं आपको जो वैसे बता रहा था ना कि सातवां ये जो आसमान है समावात, ठीक है, तो वो भी इन्हीं मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने इसकी तफसीर करी है, ठीक है, कि ये सब कुछ जो है ना वो फिजिकल वर्ल्ड के बाद है। और जहां पर देखने की बात आ रही है तो इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं कि वहां पर मुराद जो है उस लफ्ज, बिकॉज एक लफ्ज के एक से ज्यादा मानी भी होते हैं, ठीक है, तो ये मीनिंग हो सकती है। मैं आपको भी पढ़ने के अतबार से नहीं बता रहा कि मैंने ये पढ़ा है, बल्कि ये जो समझ में बात आती है कि उसका मीनिंग वहां पर ही हो सकता है कि ये जो हमें अपनी फिजिकल आईज से जो आसमान नजर आ रहा है ना, तो वहां पर उस आयत के अंदर ये वाला आसमान मुराद है। या फिर एक और मतलब भी हो सकता है कि देखने से मुराद जो है ना वो फिजिकल आईज से देखना है ही नहीं, ठीक है, बल्कि देखने से मुराद ये है कि तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो इंफॉर्मेशन ऐसी है कि वो आसमान जो है वो उसके अंदर कोई कोई सुराख नहीं है, उसके आसमान के अंदर कोई कोई जो है वो क्या कहते हैं कोई फटान नहीं है वगैरह, ठीक है। अब आप अगर इसी के ऊपर गौर कर लें कि अगर इवन अल्लाह ताला जो देखने वाले आसमान की बात कर रहे हैं कि तुम इस आसमान को नहीं देखते, इसके अंदर तुम्हें कोई तफावत नजर आता है या कोई फटान नजर आती है, तो अगर हम उसको इस आसमान के ऊपर ताबीर करें जिसको कि हम देखते हैं या जिसको हम आसमान कहते हैं, तो भाई अब जब जब से ये एयर ट्रैवल शुरू हुआ है और स्पेस क्राफ्ट भी बने हैं, तो अब हमें पता है कि ऊपर कोई चादर तो नहीं है, राइट, कोई ऊपर कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि जो कि जिसके अंदर आप फटान तलाश करें, कोई सुराख तलाश करें, कोई ऐप तलाश करें, ठीक है ना, ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा एक खुला मामला है। गैसेस है थोड़ी ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर थोड़ी सी, और वो गैसेस इवेंचुअली खत्म हो जाती हैं और फिर आप इस एटमोसफेयर से बाहर निकल जाते हैं, स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो इवन अगर हम इस देखने वाली चीज को भी कंसिडर करें तो पता लगता है कि ये देखने वाली चीज मुराद है भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो कोई सुराख वगैरह का तस्वीर ही नहीं है। आसमान को बगैर सुतून के बनाया का भी जिक्र है। हाँ, तो आसमान को बगैर सुतून के बनाया, तो इस आसमान में यानी जो जो ये सात आसमान हैं, तो ये सात आसमान जो मौजूद हैं तो ये किसी सुतून के साथ तो मौजूद नहीं है ना, ठीक है ना। तो अब हम जमीन के आसमान की बात के ऊपर उसको खाली मुंतबित तो नहीं कर सकते कि जो हमें जो अपनी आंखों से आसमान नजर आ रहा है वो बगैर सुतून के, भाई ये जो सातों आसमान है ये भी बगैर सुतून के खड़े हुए ना, इनको कोई पिलर्स को थोड़ी उठा उठा के ऊपर खड़े किए हुए हैं। यहाँ आसमान को देखने को कहा इसी सम क्या इज इस समाउन शक्कत व से आसमान दुनिया मुराद है। इज इस समाउन शक्कत में आसमान दुनिया मुराद है या स्पेस इंक्लूडेड इन इज स्पेस इंक्लूडेड इन आसमान फर्स्ट आसमान नहीं, ये स्पेस जो है ये सारी मटेरियल वर्ल्ड है, ये सारी फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक। जो सात आसमानों की बात होती है वो इस स्पेस के बाद है, ठीक है, जो कि यानी हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज वो सब क्या है वो जिसको कहते हैं ना आलमुल अमर है, और आलमुल अमर जो है वो रूहानी दुनिया है, ठीक है, उस रूहानी दुनिया को हम इस जिस्मानी आंख से जिस्मानी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, वो रूहानी दुनिया की फॉर्मेशन ही अलग है, उसकी उसकी नेचर ही अलग है, ठीक है। इधर समा उन शक्कत में आसमान दुनिया मुराद है, ये तो यानी इसकी तफसीर में उलमा ने क्या अकवाल लिखे हैं ये उसको रिफर बैक करना ही मैं बेहतर समझूंगा, ठीक है, कि वहां पर क्योंकि मुद्दत तो इज़त समाउन शक्कत व अज़नत लरब्बिहा व हुक्कत व इज़न अर्द मुद्दत व अल्कत माफीहा व तखल्लत, ठीक है, तो उसके अंदर ना जो दुनिया का आसमान है यानी दुनिया आसमान है, दुनिया से मुराद जो हमें हम समझते हैं जिसको आसमान हम देख रहे होते हैं जिसको आसमान, ठीक है, तो वो आसमान के फटने का मामला जो है वो अगर हम कहें कि जी पहला सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त आसमान फट जाएगा। तो आसमान फटने से मुराद जो है ना वो क्या है एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये आसमान कोई चादर नुमा है भी नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर या तो हम अगर इस आसमानी दुनिया की बात करें जो कि हम अपनी फिजिकल आई से देख सकते हैं या अपने इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, तो इसके फटने का मतलब क्या हो सकता है कि ये एटमोस्फेयरिक लेयर्स जो होती है ना, ये एटमोस्फेयरिक लेयर्स भी जो है वो दरहम बरहम हो जाएंगी, एक लेयर दूसरे लेयर के अंदर मिल जाएगी, जम हो जाएगी, और इनका जो ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है कि हर लेयर अलग अलग जुदा जुदा होती है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फट जाएगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। या ये कि अगर ये बात हो रही है कि जिस वक्त जो है वो जमीन को खींचा जाएगा और उस खिंची हुई जमीन के ऊपर सारे के सारे इंसान नफ़खे सानिया के वक्त जमा होंगे, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा बच्चों की क्लास के अंदर भी ये बात हुई है ना कि मैदान अरफात जो है वो किसी शक्ल में उस वक्त लाया जाएगा, और उस मैदान अरफात क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं है कि सारी मखलूक उसके अंदर समा सके, तो उसको खींच तान करके इतना बड़ा किया जाएगा कि सारी मखलूक समा सके, ठीक है। अब उस वक्त जो है वो सारी मखलूक किधर देख रही होगी, एक दूसरे को तो नहीं देख रही होगी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे जो है वो सारे के सारे बेलिबास होंगे, लेकिन कोई किसी को नहीं देख रहा होगा, सब ऊपर देख रहे होंगे। ऊपर का मतलब क्या कि ऊपर उनके जो भी आसमान वाला स्ट्रक्चर है ना वो उसको देख रहे होंगे। वहां पर क्या होगा, आगे आता है इसके अंदर, वफुतिहत समाउ फकानत अबवाबा, ठीक है, कि खोला जाएगा आसमान तो हो जाएंगे उसमें दरवाजे, ठीक है। अब ये जो है या तो उसमें किसी किस्म के यानी फटान पैदा हो जाएगी, कोई सुराख कोई दरवाजे नुमा कोई चीज पैदा हो जाएगी कि उसके अंदर से जो है ना फिर फरिश्ते नाजिल होना शुरू होंगे, क्योंकि फरिश्ते ऊपर से नाजिल हो रहे होंगे नीचे उतर रहे होंगे, इस वजह से उस कहते हैं ना ऑस एवरी पर्सन विल बी ऑस्ट्रक, ऐसा वो ऑसम किस्म का वो माहौल होगा, वो मंजर होगा कि सारे के सारे सिर्फ ऊपर देख रहे होंगे उस मंजर को, और बराबर में कौन खड़ा हुआ है, किस हालत में खड़ा हुआ है, किसी को परवाह ही नहीं होगी उसकी, ठीक है ना। तो इधर समा उन शक्कत से वो वाला शक्कत मुराद है कि जब वो शक होगा उसमें दरवाजे बन जाएंगे और उन दरवाजों से फरिश्ते उतर रहे होंगे, या ये कि ये एटमोस्फेयरिक लेयर्स जो है वो मुराद है कि वो आपस में गड़बड़ हो जाएंगी और पूरा का पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। और जैसे कि और भी हमने अभी पढ़ा था ना कि इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नुजूम कदरत, ठीक है, तो उसकी तफसीर के अंदर कि जी सूरज जो है वो गिरेगा जमीन के ऊपर, ठीक है, सूरज और चांद ये दोनों जो हैं वो जमीन के जो जो पानी है जो वाटर बॉडीज हैं जमीन के अंदर उसके अंदर आकर के गिर जाएगा, ठीक है। तो ये गिर जाएगा से हो सकता है इससे कि मेटाफोरिकली स्पीकिंग कि जी अगर हमारे ऊपर एक इमेजिनरी लेयर है जमीन के ऊपर, तो वो लेयर जो है ना वो सूरज जो है वो आएगा और उस लेयर के थ्रू होता हुआ इस जमीन के अंदर आ जाएगा, जमीन के समंदर के अंदर आके गिर जाएगा। उसी तरह से चांद भी आकर के गिर जाएगा जमीन के समंदर के अंदर। खैर इससे अब एग्जैक्टली जाहिर है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हमें इंफॉर्मेशन दे दी है तो वो तो हतमी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके अलावा ये सारी की सारी फिर इंसान की अपनी समझ, तो जो करंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होती है, उनके बेसिस के ऊपर ही हम बात कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो ना हमें पता है और ना हम क्लेम कर सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं एग्जैक्टली वही सही है, ऐसा ही होगा और कोई और तरीका नहीं हो सकता। ये सब जो है वो इस्तेमाल के दर्जे में बातें होती हैं, बल्कि हकीकत तो यही है, जैसे कि ख्वातीनी क्लास में भी इस बार जो ने समझाया है कि हकीकत तो यह है कि ये सब बातें जो है ना इनसे हमारी ना तो जन्नत जहन्नुम का कोई ताल्लुक है, ठीक है ना, हमारी कामयाबी हमारी नाकामी का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता इस किस्म की बातें जो हैं वो अपनी औलादों के साथ कम्युनिकेशन चैनल्स को खोलने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज औलादें जो है ना वो उनके साथ बात करने के लिए आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स चाहिए कि जिनके जरिए से उनकी ईमानियात डेवलप हो, उनका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो, उनका ताल्लुक कुरान से बने, वो इंटरेस्टिंग फील करें कि हाँ कुरान के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं, कुरान की तफसीर में सारी चीजें मौजूद हैं, लेट मी गो एंड स्टडी स्टडी दैट, इनके ऊपर मैं टाइम लगाऊं, बजाय इसके कि अपना टाइम जो है फजूल कामों के अंदर और कार्टून्स देखने में खाली और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और इंटरनेट के अंदर खर्च करूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इस वजह से इन सारी चीजों को हमें स्टडी करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों के साथ इस लेवल पे जाकर के बात कर सकें, ठीक है, अदरवाइज हतमी तो हमें नहीं पता कि क्या होगा एग्जैक्टली और ना हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, वो बयान तो शदादन, तो आसमानों की बात हो रही थी। वजअलना सिराजन वहाजन। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक नुक्ते की बात आपको ये बतानी थी, बड़े मजे का किसी ने लिखा है कि सिराजन वहाजन ये किसकी बात हो रही है, ये सूरज की बात हो रही है, ठीक है ना। और आपको पता होगा, याद हो शायद कि कुरान के अंदर जहां पे कमर की बात होती है, चांद की, तो कमर की क्या सिफत बयान फरमाई, कमरम मुनीरा, ठीक है ना, कमरम मुनीरा, यानी कमर जो होता है वो मुनीर है। मुनीर मतलब मुनव्वर करने वाला, ठीक है, यानी उसमें से ऐसी लाइट निकलती है कि जो कि मुनव्वर कर देती है रात को, चांद की लाइट, ठीक है। लेकिन चांद के लिए वहाज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं, अब हमें पता लगा कि जी चांद के अंदर कोई सिराती मान सज्जाजा, और नाजिल किया हमने मोसरात में से, मोसरात का तर्जुमा करते हैं निचुड़ने वाली बदलियां, मान सज्जाजा, मा पानी को कहते हैं और सज्जाजा रेले से तर्जुमा किया कुरान के अंदर। इसके अल्फाज क्या हैं, अनजलना, अनजला युनजिलु इंजालन, हमने नाजिल किया, ठीक है ना। अनजला युनजिलु इंजालन का मतलब होता है ठीक है, तो अनजलना हमने नाजिल किया, अनजला ये बाबे इफ़ाल से जमा मुतकल्लम का सीगा है, मिन हरफे जर होता है जिसका तर्जुमा से करते हैं, अल मुसरात, मौसरात का जो लफ्ज है, जो लोग मिडिल ईस्ट में रह चुके हैं या रहते हैं तो वो जानते हैं कि यहाँ पर जो जूसेस मिलते हैं ना, तो जूस को क्या कहते हैं, असीर, असीर राइट, असीर जो होता है वो निचोड़ा, बिकॉज ये फ्रूट को निचोड़ करके निकाले जाते हैं जूसेस, तो इस वजह से जूसेस को असीर कहते हैं। तो ये इसकी असल यही है, असरा युसिरु ए असारन फहुआ मुसिरुन, ठीक है, मोसरुन ये इसम फाइल का सीगा है, तो इसका मतलब होता है कि यानी जो निचुड़ता है, निचुड़ने वाली चीजें, मोसरुन इसम फाइल का सीगा हो गया। इसको आप गर्दान में चलाएं, मोसरुन मोसराने मोसरीनी मोसरूना मोसरीना, और इसका मोनस क्या है, मोसरतुन मोसरताने मोसरतैनी मोसरातुन मोसरातिन। मोसरातुन क्या है, जमा मुअन्नस इसम फाइल, जमा मुअन्नस इसम फाइल। तो मोसरातुन क्या चीज होती है कि जो यानी फीमेल चीज कोई, जिसको कि यानी अरबी जुबान में फीमेल इस्तेमाल किया गया है और वो निचुड़ती है, तो ये निचुड़ती क्या चीज है, जिससे कि फिर पानी नाजिल होता है, बादल, ठीक है ना, बादल ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर यानी पानी मौजूद होता है किसी फॉर्म के अंदर, फ्रोजन फॉर्म के अंदर और गैसियस फ्रोजन फ्रोजन गैसेस की शक्ल में, और वो जब निचोड़ते हैं तो उसके अंदर से पानी जमीन के ऊपर आता है। तो मोसरात से मुराद बादल ही मुफस्सरीन ने फरमाया है, कुछ ने जो है वो मोसरात से मुराद हवाएं मुराद ली हैं जो कि बादलों को लेकर आती हैं, ठीक है। तो चूंकि यानी बादल तो आसमान में मौजूद होते हैं, लेकिन उन बादलों को बरसाने के लिए हवाओं का अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ मुफस्सरीन ने जो है ना वो हवाओं के लिए मोसरात का लफ्ज़ इस्तेमाल। अच्छा, माँ पानी को कहते हैं, और सज्जाजन ये बहुत ज्यादा बरसने वाला, ठीक है, तो मान सज्जाजन मूसलाधार बारिश को मान सज्जाजन कहा जाता है, ठीक है। सज्जा यसुज्जु, सज्जा यसुज्जु, ठीक है, ये होगा बरसना या बहना। तो हमने बनाया यानी हमने नाजिल किया मोसरात में से मूसलाधार बारिश, मान सज्जाजा। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाने क्यों हमने नाजिल किया, ली नुखरिजा बिही हब्बं व नबातन, ताकि हम निकालें इसमें से दाने को और सब्जी को, ताकि हम निकालें इससे अनाज और सब्जा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है लिनुखरिजा, इसके अंदर एक लाम है जो कि इस वर्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये जो लाम है ना, इसका तर्जुमा उर्दू में करते हैं इसलिए के या ताके, ठीक ठीक है, इसको नामे कई कहते हैं, ताकेह के मानी में या इसलिए केह के मानी में। ठीक है, ये नामे कई जो होता है ना, इसके बाद एक फेले मुजारे आना चाहिए। तो फेले मुजारे कौन सा है? नुखरिजु, ठीक है, हम निकालते हैं, हम खारिज करते हैं। ठीक है, लामे कई क्या करता है कि फेले मुजारे को हालत नसब में डाल देता है। ठीक है, या लामे कई की वजह से फेले मुजारे हालत नसब में चला जाता है, इस वजह से नुखरिजु की बजाय ये लेनुखरिजा बन जाता है, ताकि हम निकालें बिही इससे हब्बन, हब्बा कहते हैं दाने को। ठीक है, तो चाहे गंदम का दाना हो, चाहे यानी किसी भी चीज का दाना हो, ठीक है, जौ का दाना हो या चावल का दाना हो या किसी चीज का भी दाना हो, उसको हब्बा कहते हैं। नबात, ये नबतुन की जमा है जिसको जो कि सब्जी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जन्नातन अल्फाफन, ये मैं आपका ये लंबा सब है पढ़ता हूँ, एक मिनट, जन्नातन अल्फाफन वाली आयत पे खत्म करते हैं आज की तर्जुमे को। तो जन्नात का जो लफ्ज है ये जन्नतुन की जमा है, जन्नतुन का मतलब होता है एक बाग, और जन्नात यानी कई बाग। ठीक है, ये जिन्नात नहीं है, ये जन्नात है, जीम के ऊपर जबर। ठीक है, तो ये जन्नतुन यानी बाग की जमा है जन्नातुन। ठीक है, बागों को कहते हैं। अल्फाफन उर्दू में हम कहते हैं ना लिफाफा, लिफाफे को लिफाफा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक एक शीट ऑफ पेपर होता है कि जिसको आपने लपेटा हुआ होता है एक खास तरीके से। ठीक है ना, अगर आप लिफाफे पे गौर करें तो वो एक्चुअली इधर से एक फोल्ड किया होता है, इधर से एक फोल्ड किया होता है, फिर नीचे से एक फोल्ड किया होता है, और ऊपर के फोल्ड को वो खुला छोड़ देते हैं ताकि आप वहां से चीज कोई डाल दें उसके लिफाफे के अंदर, और फिर ऊपर वाले फोल्ड को भी फोल्ड कर दें और उसको टेप लगा दें या ग्लू लगा दें। ठीक है ना, तो लिपटी हुई चीज, ठीक है, उसको कहते हैं अल्फाफ। ठीक है, तो बागों को लिपटे हुए क्यों कहा? क्योंकि यहां पर मुराद है घने बाग, और जो घने बाग होते हैं ना, यानी घने जंगल भी इसमें शामिल हो जाते हैं, घने बाग भी शामिल हो जाते हैं। तो घने बागों को लिपटे हुए क्यों कहा, अल्फाफा क्यों कहा, यानी अल्फाफा के लफ्ज से घना डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसको हम घना कहते हैं उर्दू के अंदर। ठीक है, तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो घना बाग होता है ना, तो उसके अंदर जो दरख्त होते हैं उनकी शाखें एक दूसरे में लिपटी हुई होती हैं। ठीक है ना, यानी इधर की शाख इधर जा रही है, फिर दूसरे दरख्त की शाख जो है वो भी इसके अंदर आ रही है, फिर जो पत्ते होते हैं वो भी पत्ते आपस में लिपटे हुए होते हैं गोया के, और जो घास होती है वो भी जो है वो एक तरह से लिपटी हुई, बहुत ही डेंस घास होती है। तो इस वजह से ना अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं कि हमने जो बारिश नाजिल करी ना, तो बारिश नाजिल करने से देखें, जिस जगह पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, इक्वेटर के ऊपर होते हैं, तो वहां पर बहुत घने बाग होते हैं। ठीक है, तो मौसरात वाली बारिश जहां पर होती है, यानी बहुत ही बड़े बादल जो कि पानी से भरे हुए हैं, तो उन इलाकों में जो बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर जो बाग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा घने होते हैं और लिपटे हुए होते हैं उनके अंदर। ऐसे ऐसे घने बाग होते हैं उन जगहों पर कि सनलाइट जो होती है ना, वो उस बाग के जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, या उस जंगल के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जमीन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, इतने गहरे होते हैं उसके दरख्त। करंट मटेरियल वर्ल्ड फैक्ट्स को रेफरेंस में लेकर स्कूल कॉलेज के बच्चे सवाल करते हैं कि आसमान का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, इनको समझाने के लिए कोई किताब या बयान है क्या जिसमें इसकी तफसील को क्लियरली समझाया गया हो, और कुरान के कॉन्टेक्स्ट में आसमान का जो कॉन्टेक्स्ट है या जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियरली एक्सप्लेन किया गया हो। अच्छा, कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसमें ऐसा किया गया हो? कुदरतन मेरी नज़र से अभी थोड़ी देर पहले ये किताब ऐसी गुजरी है, ठीक है, जिसमें कि शायद ये आपके सवाल का जवाब मिल जाए, तो इंशाल्लाह मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, कोई एक जगह उन्होंने, अगर अच्छा डिपेंड करता है उन्होंने लिखा है जो हमारे अकाबरीन की तफसीर है उसके मुताबिक है, या उन्होंने कोई और ही अपनी तरफ से कोई लॉजिक बयान कर दिया, तो वो तो आपको पढ़ के ही बता सकता हूँ। लेकिन इन शॉर्ट जो है ना, वो आपको ये बताना तो पड़ेगा बच्चों को कि ये जो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड है, इसके अंदर जो चीज है ना, ये सब का सब ये एक अलग वर्ल्ड है, ये एक अलग आलम है, جس کو کہ عالم الخلق کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈفرنٹ انداز میں تخلیق کیا، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی اس کو جو ہے وہ تدریجن بنایا، ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ، اور اس کے اندر ٹائم لگا، ٹھیک ہے، اور اس ورلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ کچھ کازز ہوتے ہیں اور ان کازز کی وجہ سے ایفیکٹ کریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی چیز کو گرم کرنا ہے نا، تو اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے گرم ہو جا تو وہ گرم ہو جائے گی، نہیں، آپ کو آگ جلانی پڑے گی، اور آگ جلانے سے اس میں سے ہیٹ انرجی نکلے گی، تب وہ چیز گرم ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں آگ کو اللہ تعالیٰ نے کاز بنا دیا گرم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ امر نہیں کر سکتے گرم ہو جاؤ تو وہ گرم ہو جائے گا، کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا ہے تو بھائی اس کے لیے آپ کو فریج لانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ٹھنڈا پانی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کازز، تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے اندر کاز اینڈ افیکٹ کا سسٹم رکھا ہے، تو جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اپنے فزیکل آئیز سے، فزیکل ایئر سے جو ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کا سب جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ والی دنیا ہے جس کو عالم الخلق کہتے ہیں۔ ایک دوسری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس کو کہ ہم اپنے فزیکل سینسز سے، جن کو فائیو سینسز کہتے ہیں یا سکس سینسز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں یعنی عقل بھی، یعنی جو 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 آپ کا دماغ ہے وہ بھی ایک سکس سینس ہے، سکس سینسز سے ہم اس دنیا کو پرسیو نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ خبر بیسڈ ہے، وی ہیو بن ٹولڈ اباؤٹ اٹ، ہو ٹولڈ اس، میسنجرز ٹولڈ اس، ٹھیک ہے نا، تو وہ ساری کی ساری دنیا عالم الامر ہے، اور یہ جو آسمان ہے یہ اس عالم الامر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب ایز اے بلیور وی کین ناٹ ٹیک آور انڈرسٹینڈنگ فروم سائنس بکس، بیکاز سائنس بکس ہیو بین ریٹن بائی نان بلیورس ہو ڈو ناٹ بلیو ان دا میسنجرس واٹ دا میسنجرز ہیو ٹولڈ، ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑنے کی جو کوشش ہے نا، یہ کوشش دراصل یہ کوئی بہت ہی زیادہ یعنی بہت ہی زیادہ یعنی افیکٹو کوشش نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ کو یہ کامیابی شاید کبھی بھی حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ یعنی یہ ایک ڈفرنٹ ورلڈ ہے، یہ ایک ڈفرنٹ ورلڈ ہے، تو ہم تھوڑا بہت ایکسپلین کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ اے کانورسیشن گوئنگ، ٹھیک ہے نا، بہانہ ٹو گیٹ دیم انوالوڈ ان تھنکنگ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے یہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جی سمجھ میں بھی آ جائے گا، اور وہ اگزیکٹلی آپ ایکسپلین بھی کر سکیں گے، فزیکل ورلڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ اس نان فزیکل ورلڈ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ابھی یوتھ کلاس کے اندر جو بات ہو رہی تھی جنوں کے، اور جن اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ دے ہیو دیئر اون فارم، جن جو ہے وہ آگ سے بنے ہوئے، فرشتے نور سے بنے ہوئے، ان کی بھی ایک فارم ہوتی ہے، ان کی بھی فارم ہوتی ہے، اینڈ دے بوتھ ٹیک اپ اسپیس، تو ایک بچے نے جب سوال کیا بعد میں کہ اگر یہ اسپیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو پھر اس حدیث کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے، کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی نہیں کھاتا ہے تو شیطان اس کے کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور شیطان بھی اس میں سے کھانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب اگر وہ فزیکل اسپیس لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچے کا سوال یہ تھا کہ اگر وہ کوئی فزیکل اسپیس لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں ہمارا، تو کھانا ہمیں غائب ہوتا ہوا تو نظر نہیں آتا، کہ کھانا جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو پھر ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ، تو اس کو میں نے مجھے یہی جواب دینا پڑا کہ بھائی یہ جو جنوں کا جو کھانا کھانا ہے نا، یہ ایک اسپریچول ریالٹی ہے جس کو کہ ہم اپنے ان فزیکل سینسز سے پرسیو نہیں کر سکتے، وہ کھا رہے ہیں لیکن وہ ایک اسپریچول افیکٹ ہمارے کھانے پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اسپریچول افیکٹ جو پڑتا ہے نا کھانے کے اوپر، تو اس سے وہ کھانا ختم نہیں ہونا شروع ہو جاتا، فزیکلی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ایک اسپریچول افیکٹ ہوتا ہے جس کو کہ ہم بے برکتی کہتے ہیں، بے برکتی، اور یہ بے برکتی یہ فزیکل چیز نہیں ہے، یہ ایک اسپریچول چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کہ ہمارے یعنی اسپریچول پروگرس کے اوپر افیکٹ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے نا ہماری یعنی فزیکل کیفیات متاثر ہوتی ہیں، فزیکل کیفیات نہیں سوری روحانی کیفیات متاثر ہوتی ہیں، تو شیطانوں کا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا فزیکلی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ان چیزوں کو آپ کو میٹافوریکلی ایکسپلین ہی کرنا پڑے گا، خبر کی بیسس پر، وحی کی بیسس پر ایکسپلین کرنا پڑے گا، آپ سائنٹیفک آبزرویشن کی بیسس پر ان کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، تو لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو فائٹ اے ऑलरेडी लॉस्ट बैटल, ठीक है ना। ये बैटल अगर आप फाइट करने की कोशिश करेंगे ना, तो यू नॉट गोना विन इट, यू विल नॉट विन इट, बिकॉज ये है ही नहीं ये वाली बैटल, ये तो खबर वाली बैटल है, ये तो वही वाली बैटल है। इसी वजह से ना अक्सर, सॉरी आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है ना, कुछ लोग आजकल ज्यादा प्रोमोट भी कर रहे हैं कि जी बच्चों के अंदर नमाज का शौक पैदा करने के लिए जो है ना, उनको आप रिवॉर्ड्स उनके साथ रखें कि जी अगर फजर की नमाज में आएंगे तो उनको साइकिल खरीद करके देंगे, ठीक है ना, अगर फलाना ने किया काम करेंगे तो उनको ये काम, उनको ये चीज खरीद करके देंगे, उनको ये वाला तोहफा मिल जाएगा, उनको ये वाला तोहफा मिल जाएगा, ठीक है। ये जो तरीका है ना, थोड़ा बहुत तो ठीक है, हम नहीं मना कर रहे कि आप ऐसा, बच्चों को अप्रिसिएशन चाहिए होती है, वो छोटे होते हैं और अप्रिसिएशन तो हर इंसान को चाहिए होती है, बच्चों को जरा ज्यादा चाहिए होती है, तो अप्रिशिएट बेशक उनको करें, लेकिन याद रखें डोंट पुट फिजिकल प्राइस टू दीज थिंग्स। ऐसा ना हो जाए, बल्कि यानी ऐसा हो रहा होता है अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर, कि आप बाकायदा एक फिजिकल प्राइस रखना शुरू कर देते हैं नेकी के कामों के अंदर। दुनिया की चीज मिलेगी, साइकिल मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, अगर नमाज पढ़ोगे, अगर कुरान पढ़ोगे, अगर ये करोगे वो करोगे, तो इससे क्या होता है, बच्चा फिर उसकी नीयत यही बन जाती है, ठीक है, कि वो इसी काम के लिए कर रहा होता है, उसकी निगाह आखिरत से बिल्कुल हट जाती है या कभी आखिरत की तरफ जाती ही नहीं है वो निगाह, ठीक है। तो इस वजह से ना हम ये तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिजिकल तरीके टू गेट देम इनटू अ स्पिरिचुअल थिंकिंग। हाँ, अप्रिशिएट करें उनको, जुबान से भी अप्रिशिएट करें, कभी कभी उनको गिफ्ट भी लेकर के दे दें, लेकिन पता है क्या होता है, हमने बाकायदा देखा है अपना, अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये देखा है, कुछ लोगों ने मशवरा किए बगैर इस किस्म के काम शुरू कर दिए, बयान सुनकर, अरे बयान के अंदर अप्रिसिएशन का को इनकरेज किया जा रहा होता है, तो बयान सुन करके तो या किताब पढ़ करके तो फिर इंसान अपने मन अपने हिसाब से जो काम करता है उमूमन गलती ही होती है उसके अंदर, तो उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, उनके बच्चों ने बकायदा पेरेंट्स को ब्राइब करना शुरू कर दिया कि जी आप ये चीज लेकर देंगे तो मैं ये काम करूंगा, नहीं लेकर देंगे मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना, अब कर लो जो करना है। अब वो सर पकड़ के बैठे हुए कि यार ये क्या हो गया, ये तो ब्राइबरी शुरू हो गई, ये तो बच्चों के अंदर हिर्स और लालच के रूहानी अमराज पैदा हो गए, ठीक है ना, कि भाई ये करेंगे तो करूंगा, नहीं करेंगे तो नहीं करूंगा, तो ये नहीं कर सकते ना हम, ये हमें उनके अंदर रूहानी, उनको तरक्की करनी है, उनको रूहानी तरबियत देनी है, उनकी ईमान को बढ़ाना है, ये नहीं कि उनको दुनिया की चीजों का जो है वो लालची बना देना इस तरीके से ना, तो ये डजंट वर्क। हाँ, अगर कोई कर रहा है अगर, तो देखेंगे कि कौन कर रहा है, उलमा और मशायख अगर ये काम कर रहे हैं ना, तो फिर आपको ये सोचना होगा कि वो अगर ये काम कर रहे हैं ना तो वो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, हो सकता है उनके मखसूस हालात ऐसे हों कि उनको ये करना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो उनके लिए फिर आपको कोई तावील, कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि करने वाले उलमा और मशायख हैं, ठीक है ना, उनके पास इल्म है, उनके पास समझ है, वो रूहानियत को समझते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपने मखसूस हालात की वजह से ऐसा कर रहे हो, लेकिन हमारे हालात जो है वो अगर वैसे नहीं है ना, तो हमारे ऊपर उनका जो सोल्यूशन है ना, बच्चों को इनकरेज करना नमाज के लिए, उन्होंने जो सोल्यूशन बनाया है, ठीक है, कि उनको ये रिवॉर्ड देंगे, ये रिवॉर्ड देंगे, तो उनका सोल्यूशन उनके हालात के लिए है, हमारे हालात डिफरेंट है, हमारे ऊपर उनका सोल्यूशन जरूरी नहीं है कि अप्लाई हो, तो हमारे हालात के मुताबिक हमें अपने उलमा मशायख के साथ मशवरा करना चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चों को अप्रिशिएट, क्या हम इस तरह से मटेरियली उनको अप्रिशिएट करेंगे तो फायदा होगा या उल्टा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी, बाकी भी कोई सवाल हो तो बाद में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह काफी देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम।